क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।
ओम शांति। जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी की हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी की हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। क्रांति का यह पर्व आया, क्रांति पर्व है। क्रांति सतत घटने वाली घटना है। संसार में क्रांतियां हुई और खत्म हुई, पर जब परमात्मा धरा पर आता है तो एक अभिनव क्रांति होती है, एक नूतन क्रांति होती है, एक ऐसी क्रांति जो सतत घटती है, निरंतर घटती है। वो तब भी घटी थी, वो अब भी घट रही है और वो घटेगी, क्योंकि जब भगवान धरा पर आता है तो एक ऐसा विज्ञान सिखाता है, परिवर्तन का विज्ञान, जो आज तक शायद किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो यज्ञ इतिहास का ये सिलसिला कितने दिन हो गए, पिछले 57 दिनों से चल रहा है, जो हमने कल भी देखा था कि शुरुआत से लेकर तो नए नए नज़ारे सामने आए। और बाबा कहते थे कि जितने विघ्न आएंगे, जितनी समस्याएं आएंगी, जितनी परिस्थितियां आएंगी, जितने किस्से कहानियां इस यज्ञ के इतिहास के साथ जुड़ेगी, उतना ये यज्ञ निखरेगा। और वो केवल यज्ञ की ही बात नहीं, हमारे जीवन की भी बात है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं, विघ्न नहीं, समस्याएं नहीं, मुश्किलें नहीं, वो जीवन जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। तो तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पे यदि चल रहे हैं और कोई भी विघ्न नहीं आ रहा है तो हो सकता है कोई गलती हो रही है। सब कुछ होगा, जो यज्ञ के साथ हुआ है वो हमारे साथ भी होगा। जीसस क्राइस्ट बाइबल में वाक्य है, दे हैव परसिक्यूटेड मी, दे विल परसिक्यूट यू। उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें सताएंगे। उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंके, वो अपने शिष्यों से कह रहा है, दे विल स्टोन यू, वो तुमको तुम पर भी पत्थर फेंकेंगे। वो मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं, वो तुम्हें भी सूली पर चढ़ाएंगे। परंतु वो मेरी महिमा एक दिन गाएंगे तो तुम्हारी भी महिमा एक दिन गाएंगे। और हर क्रांति एक दर्द, एक पीड़ा से गुजरती है। तो हमने देखा शुरुआत के दिनों से लेकर विरोध चालू ही था। कब तक चला? 1980s के बीच तक। अभी भी चालू है, परंतु उस रीति से नहीं जैसे 80s तक चल रहा था। मिड 80s तक थोड़ा थोड़ा चालू ही था। संकोच होता था लोगों को आने के लिए, या डर भी था। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ, अफवाहें पहले से फैली हुई है। तो ब्रह्मा कुमारियों का विरोध कोई नई बात नहीं है। तो आज के सत्र में हम ऐसी 16 प्रकार की भ्रांतियाँ या 16 प्रकार के विरोध जो यज्ञ को शुरुआत से सामना करना पड़ा उसकी चर्चा करेंगे। पर जैसे कहा है कि जब अचानक कोई आकर सत्य बताता है तो जो सोए हुए लोग होते हैं उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अंधों की नगरी में कोई एक व्यक्ति आ जाए जिसे दिखाई देता है और वो उनसे कहे कि तुम सब अंधे हो, तो वो उसका क्या हाल करते? वो देखते हैं कि जब तक ये अंधा ना बन जाए उन्हें चैन नहीं आता है। जो किसी की नींद तोड़ने आता है, गहरी नींद में हम सोए और आकर कोई जगा दे, तो वो मित्र अनुभव होता है या शत्रु? तो भगवान ने आकर नींद तोड़ दी और जो जाग गए अब उनको कहा कि तुम जाकर दूसरों की नींद तोड़ो। और जैसे ही वो निकले तो घोर तंद्रा और निंद्रा में जो सोए थे उनके लिए ये असहनीय था। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी राह में दुश्मनों की कमी नहीं है। इतिहास में वर्णन है चनक का, धनदन के साम्राज्य में आचार्य चनक था, सत्यवादी, जिसने धनदन के खिलाफ आवाज उठाई। और धनदन ने क्या किया? उसको पकड़कर कारागार में डाल दिया। चनक की पत्नी सोचती है कि मेरा पति आएगा, वापस आएगा, परंतु उसका बेटा विष्णु वो क्या कहता है? एक बहुत अच्छा ये वीडियो है 2 मिनट का।
तेरे पिता कहाँ है विष्णु? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरे पिता कहाँ है विष्णु? तू बोलता क्यों नहीं? पागल हो गया है क्या? तू बोलता क्यों नहीं?
अगर तुझे जनक की पत्नी होने का गर्व है और मेरी माँ होने का अभिमान, तो यह प्रश्न कभी मत पूछना। माँ, यदि तुझे अपने पति के मरने का शौक मनाना है तो मना ले, पर मैं आंसू बहाकर अपने पिता के पुण्यों को नहीं दूंगा। सुन, तेरे पति को धनानंद की सिपाही उठा ले गए।
मुझे तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है विष्णु।
सत्य बड़ा कठोर होता है माँ,
पर तेरे पिता जीवित भी तो हो सकते हैं।
मैं तुझे सहानुभूति के कोई शब्द नहीं कहूंगा, कोई आश्वासन नहीं दूंगा। तुझे इस सच्चाई के साथ ही जीना होगा कि तेरा पति जीवित नहीं है।
नहीं विष्णु, वे भला एक शिक्षक को क्यों मारेंगे? वे उन्हें बंदी बनाकर कारागार में रखेंगे, पर मारेंगे नहीं। हाँ, वे भला एक ब्राह्मण को क्यों मारेंगे? मेरा मन कहता है तेरे पिता जीवित हैं।
तू भी ब्रह्म में जीना चाहती है, उसी ब्रह्म में जिसमें तेरा पति जीता था, कि मगध के लोग उसकी सहायता को आएंगे? अगर तेरा पति जीवित भी है तो उसे रोज थोड़ा थोड़ा मारा जाएगा, इसलिए तोड़ दो अपने इस झूठे विश्वास को।
नहीं, मेरा मन कहता है तेरे पिता जीवित है।
तेरा पति कोई मामूली चोर या हत्यारा नहीं था, वो सच के लिए लड़ने वाला था, और सच के लिए लड़ने वालों को कारागार की सलाह के नहीं मृत्यु ही रोक सकती है।
तेरा पति तुझे मुझ पर बिल्कुल दया
तेरा पति तुझे मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आती। वो कहता है जो मर गया वो मेरे पिता नहीं थे, मेरे पिता तो मेरी रक्त की धमनियों में बह रहे हैं, चाणक का पुत्र चाणक्य के रूप में। तो संसार में क्रांतियां हुई है, और जिन्होंने भी क्रांति की उनके साथ क्या हुआ, मार दिया गया, क्योंकि ये संसार सहन नहीं कर सकता। तो विरोध, निंदा, ग्लानि, विघ्न, आरोप, धोखा, जो कल भी हमने देखा, ये सब कुछ सहन हुआ और शुरुआत से ही ये होता रहा। परंतु ये परमात्मा कीमिया, गॉड्स एल्केमी है, कि जो जो विघ्न आए धीरे 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 सब कुछ पार करते हुए ये कारवा आगे ही बढ़ता गया। तो कौन कौन से विरोध? सबसे पहला जो शुरुआत से होता आ रहा है, ब्रह्मचर्य। ये लोग क्या करते हैं, परिवार को तोड़ते हैं, सबसे पहला विरोध। क्योंकि जो कन्या है वो कुमारी है, उनके लिए भी फिर भी ठीक है, पर जो विवाहिता है, जो मैरिज में है ऑलरेडी, उनके लिए भी ब्रह्मचर्य। बस परिवार, फैमिलीज को तोड़ने का काम है। ऐसी इनकी एक भ्रांति जो शुरुआत से फैली। पहले हम पूरे नाम गिनाएंगे, फिर एक एक के विस्तार में जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये था। दूसरा, इनके पास एक जादू है, जो एक बार यहाँ जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। अगर कोई जाने निकलता है तो उसे ऐसी विदाई दी जाती है कि जैसे वो अपने जीवन की अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़ रहा है। माउंट अबू जा रहे हो, पता नहीं वापस आओगे कि नहीं आओगे। तो ये पहला। दूसरा, जादू, सूरमा। तीसरा, पति पत्नी को क्या बना देते हैं, भाई बहन। जो अभी तक पति पत्नी थे, जब से वहाँ गए अभी वो अपने पति को भाई कहती है और वो उसको बहन जी। तीसरा। चौथा, इनका ब्रह्मचर्य एक दिखावा है। वैसे है ये पथभ्रष्ट लोग, पर ब्रह्मचर्य क्या है, एक ढोंग है, एक आडंबर है, ऊपर ऊपर का है। पांचवा, ये कोई धर्म है ही नहीं, या फिर ये लोग, ये उस समय की बातें बता रहे हैं, 60s की। हम कहाँ पर हैं अभी, 59 और 69 के बीच में। तो ये लोग अमेरिका के एजेंट्स हैं, क्या कहते थे, ये लोग अमेरिका के एजेंट हैं, यहाँ आए हैं। अगला, एक निराधार कहानी बनाई थी दादा लेखराज के बारे में। कौन सी कहानी, जो कि जिसके फोल्डर्स भी बने थे, पर्चियाँ बनी थी, और वहाँ पर वो बांटे गए थे, और जहाँ जहाँ प्रोग्राम प्रदर्शनी होती थी वहाँ वो बांटी जाती थी। वो कहानी कौन सी, कि ये जो दादा लेखराज है, ये पहले क्या था, मेरठ में साइकिल के रिपेयर की इसकी दुकान थी एक। फिर वहाँ एक माया देवी नाम की कोई बहन या माता थी, उसको भगा के लेके गए, और फिर कलकत्ता में गए और वहाँ पर जादू सीखा, और फिर वापस आके बहुत सारी माताओं को बहकाया, और इसके लिए सरकार ने उसे दंड दिया और जेल में डाला, सिंध के जेल में। तो ऐसी एक कहानी, लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहानी केवल बनाई नहीं, उसको लिखा, पर्चे बनाए, फोल्डर्स बनाए, और जहाँ जहाँ प्रदर्शनी हो रही है वहाँ पर गेट के बाहर जो अंदर लोग जा रहे हैं या निकल रहे, उनको बांटने का काम। और हेडिंग क्या, ब्रह्मा कुमारी पाखंड उसका। तो ये था सातवा। अगला, हाँ छठवा, उसके बाद ये एंटी हिंदू है, क्योंकि ये लोग हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है इसको नहीं मानते, स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते। तो ये एंटी, क्योंकि जो अवेलेबल स्क्रिप्चर है उसको मानना चाहिए ना, जो अवेलेबल है, उपनिषद है, वेद है, इन्होंने अपना ही एक नया लाया है, इसके लिए बहुत दुख हुआ सबको। उसके बाद में अगली एक भ्रांति थी कि ये ईश्वरीय तो है, उन्होंने कही, उन्होंने इसको समझा ईसा अर्थात क्रिश्चियन, ईश्वरीय ईसा। तो और कपड़े भी कौन से, वाइट, तो हो सकता है ये क्रिश्चियन मिशनरीज है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करना है, वैसे ये लोग भी आए हैं और है कौन? क्रिश्चियन। अगला, इनकी जितनी प्रोफेसीज थी अब तक की विनाश की, वो सारी फेल होती गई और ये लोगों ने उसके छिपाने की कोशिश की है। सबसे पहला 43 वर्ल्ड वॉर जो था वो लास्ट है, उसके बाद में 1950, उसके बाद में 76, ये तो बहुत ही बहुचर्चित है 76 वाली, क्योंकि बाबा के कुछ कुछ महावाक्य भी उस टाइम के ऐसे ही है। उसके बाद में 80s में बहुत सारी, 80s में 2000 2012, तो ये सब, ये जब भी इनकी प्रोफेसी फेल होती है ये आगे बढ़ा देते हैं कि विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला, डिस्ट्रक्शन कल्ट का कहते कई लोग इसको। तो ये एक दूसरा, भोजन ये दूसरे के हाथ का नहीं खाते, ये एक। अगला, ये VIPs के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं, गरीब के पीछे नहीं जाते ये लोग, इनको कौन चाहिए? VIP लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं। अगला, एग्जैगरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, वो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, मैं, हम ब्राह्मण और ये बाकी सब शूद्र, सेल्फ इम्पोर्टेंस को ज़्यादा महत्व देते हैं। उसके बाद में ये जो इनका साइकिल है 5000 साल का, इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट साइंस है, क्योंकि इनके फिलोसफी में डायनासोर्स को कोई रोल ही नहीं है कहीं, कार्बन डेटिंग को गलत मान रहे हैं। 5000 ईयर्स की ये जो सारा पूरा 5000 साल में पूरा कर दिया ये लोगों ने, कमाल है। हमारे इधर लाखों हजारों साल का पूरी गणना है, वेदों में, उपनिषदों में सब कुछ है, मनवंतर जो इतना लंबा है, 5000 साल में समेट लिया, लपेट लिया पूरा सृष्टि चक्र को। उसके बाद में पैसा, मनी, पैसा इनके, ब्रह्मा कुमारी मतलब पैसों की फैक्ट्री इनके पास पैसा बहुत है। उसके बाद में इन्होंने अपनी जो टीचिंग्स है वो बड़ी सीक्रेट रखी है, या उसको रिवाइज करते रहते हैं, रियल टीचिंग्स पहुंचने नहीं देते, कई बार रिवाइज की है। उसके बाद में अगला, उनकी ये मान्यता है कि भगवान केवल इन्हीं से बात करता है, इनका एक ग्रुप है बस उनसे ही बात करेगा, मतलब हम जो इतने भगत और उसकी प्रार्थना, भक्ति, पूजा करते हैं, हमसे भगवान का कोई लेना देना नहीं, भगवान आएगा संसार पर, ये जो इतने लोग हैं इनके, इनसे ही बात करेगा और फिर इन्हीं को जाके सतयुग में भेजेगा, और हमारे जो धर्म स्थापक है, हमारे गुरु है, हम सब कलयुगी है, हम किसी में नहीं आएंगे, ये ही आएंगे बस, हम अज्ञानी, ये ज्ञानी। उसके बाद में यहाँ कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है, ट्रांस, ट्रांस की प्रैक्टिसेस, ये ऑटो सजेशंस, हिप्नोसिस, ये सब ऑकल्ट विद्या जो है, तंत्र मंत्र वाली, ये सब यहाँ सिखाई जाती है इन लोगों को। इसके लिए थोड़ा बच के, ओम शांति भवन में वो जो गाड़ियाँ आती है ना गेस्ट वाली, उनको क्या कहते हैं वो गाइड लोग, फटाफट जल्दी आ जाना, वहाँ ज़्यादा समय मत बिताना बस 10 मिनट के अंदर आ जाना है फटाफट, ज़्यादा सुनने का नहीं बैठना उनको, कोई पूछना कुछ भी नहीं, बिल्कुल चुपचाप सुन के वापस आ जाना गाड़ी में, तो बस बाकी पूरा मैं आगे का मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में इनका एक नया धर्म है, ब्रह्मा कुमारिज्म ये नया धर्म लेके आई है अपना, एक कितने हो गए, 15 16, तो अब एक एक पर चलते हैं। सबसे पहला बताया ब्रह्मचर्य, तो भगवान जब धरा पर आएगा तो वो सब नहीं सिखाएगा जो अब तक लोगों ने सिखाया था, उसकी शिक्षाएं अत्यंत भिन्न होगी, वो पवित्रता का ज्ञान देता है, क्योंकि उसे एक नई पवित्र दुनिया स्थापन करनी है, और ब्रह्मचर्य तो एक बहुत छोटी सी बात है उसमें। अगर हम पूरी मुरलियों का भी अध्ययन करें तो ब्रह्मचर्य के विषय में बाबा ने बहुत सारा कुछ नहीं कहा है, ज़्यादा किस लिए कहा है, प्योरिटी के लिए कहा है। ब्रह्मचर्य एक छोटा सा भाग है परंतु बहुत महत्वपूर्ण बेस है उसका, आधारशिला है उसकी, बिना इसके आगे प्रोग्रेस हो नहीं सकती। 3 दिन 4 दिन पहले मुरली थी, जब ब्रह्मचर्य भंग होता है धारणाएं नहीं होती है, ब्रह्मचर्य भंग हो गया तो अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस रहती है, ब्रह्मचर्य भंग होते ही बुद्धि की जो एकाग्रता है वो भंग हो जाती है, ब्रह्मचर्य भंग होते ही जो कॉन्फिडेंस है ज्ञान योग में आगे बढ़ने का वो गिर जाता है, खत्म हो जाता है। और ये मान्यता केवल यहीं की नहीं है, अब तक भी संसार में कितनी ढेर सारी बुक्स लिखी गई है ब्रह्मचर्य पर, परंतु बाबा ने जो कहा वो एक बात थी कि जो शादी किए हुए हैं उनके लिए भी ब्रह्मचर्य, सबके लिए एक ही नियम। ये थोड़ी बात लोगों को खटकी। वो ठीक है जो कुमार कुमारी है वो रहे अनमैरिड, पर जो ऑलरेडी है यहाँ ही फिर डिस्टर्बेंस हो गया। वास्तव में ये सारे जो इतने विरोध है 16, इसका आधार यही है, ये उसका फाउंडेशन है। ये विरोध का भी आधार है, ब्रह्मचर्य स्थापना का भी आधार है तो विरोध का भी आधार है, क्योंकि ये एक एडिक्शन है। काम विकार लस्ट जो है वो एडिक्शन है, सबसे बड़ा एडिक्शन संसार का, इससे बड़ा और कोई एडिक्शन नहीं है। भोजन और ये सब बहुत छोटे हैं इसके सामने अगर एक रीति से देखा जाए तो। और कर्मा फिलोसॉफी एक एडिक्शन जैसा है, ऑटो एडिक्शन है, एक ऑटो हिप्नोसिस है। जो व्यक्ति रोज 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 करते जाता है करते जाता है करते जाता है, एक दिन वो ना करे तो उसको मिस करता है। जब करता है तो मिलता कुछ नहीं, पर जब नहीं करता है तो मिस करता है। ये जो चक्र है ये कर्मा फिलोसॉफी का चक्र है। एक कंडीशनिंग है माइंड की, एक रेपिटिशन जो होते रहा है, पुनरुक्ति होती रही होती रही होती रही होती रही होती रही, एक प्रोग्रामिंग हो गई है माइंड में। तो जैसे ही इसको कोई तोड़ने की कोशिश करता है या इसके प्रति विरोध होता है तो क्रोध ज्वाला प्रकट होती है। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज, काम विकार और बाकी विकारों में क्या अंतर है? दो महत्वपूर्ण अंतर है। काम विकार में 100% देहभान की आवश्यकता है, बाकी जो विकार है उसमें 100% की आवश्यकता नहीं। एक दूसरा अंतर ये है कि जब क्रोध आता है तो खाली क्रोध रहता है, जरूरी नहीं क्रोधी व्यक्ति लोभी होगा, जरूरी नहीं क्रोधी व्यक्ति में अहंकार भी जागेगा, या जब अहंकार जागता है तो जरूरी नहीं व्यक्ति में लोभ होगा, पर जब काम जागता है उसमें सारे विकार समाहित है एक साथ, उसमें क्रोध भी है, उसमें लोभ भी है, उसमें अहंकार भी है, सब कुछ है उसमें, सब कुछ एक में ही समाहित है। बाकी विकार इंडिपेंडेंट ऑपरेट करते हैं, या थोड़ा दो मिल जाएंगे तीन मिल जाएंगे, पर ये सारे के सारे ईर्ष्या घृणा नफरत सब कुछ काम में समाहित है। इसके लिए बाबा ने सारा फोकस इसके ऊपर ही किया, इसके लिए भयंकर विरोध हुआ। अगर बाबा ने आकर कहते भगवान आए क्रोध से सबको मुक्त होने, तो पता नहीं तभी कितनी संख्या बढ़ गई होती सबकी। ये एंटी ओम मंडली तो बनती ही नहीं थी। इसका बनने का कारण ही क्या था? काम, क्योंकि ये डीपेस्ट ग्रेटेस्ट हाईएस्ट एडिक्शन है, व्यसन है वो। उससे व्यसन से मिलता क्या है वो प्रश्न ही नहीं है, बस वो नहीं मिला तो बेचैनी होती है। दारू पी रहा है व्यक्ति 40 साल से, कहो उसको छोड़ो नहीं छोड़ पाता है, बेचैनी होती है उसको, धीरे धीरे छोड़ पाता है। कोई कोई बहुत दृढ़ संकल्प होगा धक से भी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला जो विरोध हुआ वो किस बात का विरोध हुआ? ब्रह्मचर्य का विरोध, और इसके लिए ही बाकी सारे विरोध खड़े हुए। दूसरा, इनके पास क्या है? जादू। इनकी आंखों में तो बिल्कुल नहीं देखना, जब इनके पास जाओ ब्रह्मा कुमारी तो नजरें नीचे रखना है, क्योंकि आंखों में ये काला काला सूरमा भी डालते हैं, लगा के रखते, और जैसे ये लोग दृष्टि देंगे फिर तो तुम गए। इसके लिए इधर उधर देखते रहना बस, पर उनकी आंखों में मत देखना। अब ये तो है भ्रांति, सच्चाई क्या है फिर? सच्चाई ये है कि जब आत्मा ब्रह्मचर्य की और पवित्रता की साधना करती है तो अपने आप आंखों में शक्ति आने लगती है। तीन प्रकार की दीक्षा होती है, नयन दीक्षा, मंत्र दीक्षा, स्पर्श दीक्षा। एक होता है नयन, आंखों से ही शक्ति भर देना, देखते देखते ही, जैसे संजय में शक्ति भर दी ना व्यास ने, धृतराष्ट्र को कहा कि तुम यहां बैठ के देखोगे, धृतराष्ट्र ने कहा मैं कैसे पहचानूंगा, पर मैं तो पहचानता ही नहीं किसी के चेहरे। तो ठीक है, फिर संजय, तो संजय को दृष्टि दे दी, तो वो दृष्टि कैसे दी? आंखों से। तो आईज में बहुत पावर है। बाबा ने कहा है बाप से दृष्टि लो और विश्व को दृष्टि दो। इसके लिए हमारी आंखों पर बहुत काम करना है। और अंतिम सेवा किस किस से होगी? आंखों से, चेहरे से और मस्तक से। तुम्हारा मस्तक टीवी का बोर्ड बन जाएगा, आंखें और चेहरा ये प्रत्यक्षता करेगा बाप, शब्द नहीं। शब्द किस किस को सुनाओगे, कितना भाषण करोगे, वाइब्रेशंस। तो आईज में अपने आप पावर आ ही जाती है, इसलिए वो जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं कि जादू तो है, ऐसे ही नहीं कह रहे ये लोग, उनकी बातों में हर बात में तथ्य है, एवरी पॉइंट इज करेक्ट। तो वास्तव में जादू है, जादू है, पर कौन सा जादू? ईश्वरीय जादू है। तीसरा, ये लोग भाई बहन बना देते हैं। जो हस्बैंड वाइफ है वो क्या बन जाते हैं? भाई बहन। जो उस दिन भी सुनाया था महात्मा गांधी जी की कहानी और रामकृष्ण परमहंस की कहानी। तो वास्तव में हर एक चेतना एक आत्मा है। ये इसी संबंध से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो ही एक डिटैचमेंट रहता है। जैसा ही पति अगर कहे ये मेरी पत्नी है, या फिर जो ज्ञान में भी चलते हैं वो भी क्या कहते हैं, ये मेरा युगल है, ये ऐसा तो कहना ही पड़ता है, इसमें भी एक बंधन है। इसलिए जगदीश भाई जब पहली बार आए तो उन्हें सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा लगा? तीन चार चीज़ों का। कौन सा? भाऊ की जो पत्नी है, विश्व किशोर भाऊ की, संतरी दादी, वो क्या कह रही है उनको? भाऊ। ये पहला। दूसरा, यशोदा जो है वो बाबा को क्या कह रही है? बाबा। पत्नी अपने पति को बाबा कहे, ऐसा कभी हुआ है क्या? अपने पति को पिता कहना, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, मम्मा की मम्मा, मम्मा की मदर, मम्मा को मम्मा कह रही है, या यशोदा मम्मा को मम्मा कह रही है। ये सब उलट पुलट सारे संबंध हो गए इधर। ये आश्चर्य लगा। हम जैसे ही किसी से जो संबंध जोड़ते हैं एक बंधन में फंस जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है कि उसको इतनी बीमारियां होती है, कभी ठीक नहीं होता है, वो इतने लोगों के पास, डॉक्टरों के पास जाता है पर ठीक नहीं होता है। आखिरकार एक डॉक्टर के पास पहुंचता है, जो डॉक्टर उसको सिखाता है ये सब बंद करो दवाइयाँ, बस एक ही मंत्र मैं तुमको देता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, बस रिपीट करते रहो ये। तो वो रिपीट करना चालू करता, मैं बीमारियों से मुक्त हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम कंचन काया, एकदम स्वस्थ हूँ, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है, पर उसमें फिर एक और परिवर्तन आ जाता है, उसका अपनी पत्नी में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो पत्नी को लगता है ये पहले मेरे से बात करते थे, मेरे साथ घूमते थे, तो आजकल तो कुछ भी नहीं करते, क्या हो गया ये? तो वो कहते कुछ तो राज होगा। तो एक बार वो ये भी देखती है, ये बाथरूम में जब जाते तो जल्दी बाहर नहीं निकलते, तो जाके सुनती है एक बार, तो वो बाथरूम में बैठ के वो कह रहा है ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी। यहां से कंडीशनिंग कर दी, ये मेरा पति नहीं, ये मेरा बोलना नहीं, पर नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। ये इंटरनल प्रोसेस है, गुप्त रखना है इसको। क्योंकि जैसे संबंध जोड़ा, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन, वो एक एनर्जेटिक कॉन्टेक्ट हो जाता है उस आत्मा के साथ। और जैसे हम अपने आप को डिटैच कर देते, ये एक आत्मा है, ये एक सेट ऑफ संस्कार है, जब भी किसी को मिलो ये भी नहीं सोचो यार ये क्या, एक सेट ऑफ संस्कार से, संस्कारों का समूह है ये जो आया है बच्चा बच्ची जो भी है, जिनके संपर्क में संस्कारों का एक समूह है, जो अभी वर्तमान संस्कार जो है वो ऊपर ऊपर के, अंदर पता नहीं क्या क्या है, ढेर सारी चीज़ें होगी। अभी जो एकदम निरागस, एकदम भोला भाला सा लगता है, वो वैसा है नहीं इतना भोला भाला। रियल रूप बाद में प्रकट होगा, धीरे 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 शादी के बाद। तो अगर देखा जाए तो सभी आत्माएं हैं, और ये जो संबंध है भाई बहन का ये फिर भी ठीक है, पर बाबा कहते इसमें भी कभी कभी विकार हो सकता है। तो क्योंकि ये कलयुग है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग पॉसिबल, सबसे बेस्ट एक ही है आत्मा। तो भाई बहन को किस दृष्टि से देखे और बहन भाई को किस, इस पर भी कभी चर्चा हुई थी, 8-10 बातें हैं। सबसे पहले तो भाइयों की ले लेते, भाई किस दृष्टि से देखे, ये कौन है? आत्मा है, एक परम धाम से आई हुई आत्मा, अभी अभी आई है। दूसरा ये भाई है, एक तीसरा ये बहन है, चौथा देवी है, सतयुग की नारायण लक्ष्मी बनने वाली है, या वो देवी है जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है, फरिश्ता है, माँ है। ये जो संबंध है बड़ा प्योर संबंध है, सबको माँ, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपे निसंस्थिताम, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये माँ है, शिव शक्ति है, फिर शिव शक्ति है, ये शिव की अर्धांगिनी है, ये ब्रह्मा कुमारी बहन है, ब्रह्मा कुमारी है, ये टीचर है, ये शिक्षक है, ये गुरु है, और शिव की अर्धांगिनी है, उसका हस्बैंड ऊपर बैठा है, भोलानाथ और भालानाथ। तो उसका मिस्टर ऊपर है, किससे बात कर रहे हो, थोड़ा संभाल के बात करना इधर, क्योंकि वो जो है ना बड़ा जेलस है, पजेसिव है बहुत, उसको बिल्कुल सहन नहीं होता है, एकदम पजेसिव है। आई थाई गॉड आई एम थाई जेलस गॉड, जी बाइबल का भगवान कहता है मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ, अगर उसने तुमको देख लिया उसके साथ तो बस गए काम से, फिर देख लेना इसके लिए। नहीं हमारा क्या हाल होगा, वो तो उसके साथ
दूसरा
तुम्हारे खैर नहीं, फिर तो भाई बहन बनाते बनाते नहीं है ही पहले से, कि गलती से हस्बैंड वाइफ बन गए। अगला, ये लोग पथ भ्रष्ट करते, ब्रह्मचर्य इनका दिखावा है, ढोंग है। ढोंग अगर होता तो इतना सहन क्यों करते? ढोंग अगर है तो किस लिए, किसको दिखाने के लिए, क्यों क्यों मुसीबत मोल लेना है? हाँ, और ढोंग जो है वो अल्पकालिक होता है, लंबा समय चले ऐसा नहीं हो सकता है, और करे भी किस लिए, क्यों कर रहे ढोंग? अगला, ये एजेंट्स हैं अमेरिका के, तो इनको पैसा तो फिर अमेरिका से आना चाहिए ना, ठीक है ना। एक तरफ तो ये भी कहते हैं कि ये लोग कुछ मांगते नहीं है, या ये भी कहते हैं कि हम केवल उनसे लेते हैं जो धारणाओं पर चलते हैं। ये परस्पर विरोधी बातें हैं बहुत सारी, अगर ऐसा होता तो। अगला, ये जो कहानी बनाई थी बहुत बड़ी, जो लंबी चौड़ी कहानी बनाई थी ना दादा लेखराज, थोड़ा जाके सिंध में जाके थोड़ी इंक्वायरी करनी चाहिए थी ना, ये कौन था, ये जौहरी था या साइकिल वाला था? जो सत्य बातें असत्य बातें होती है, अफवाह होती है, उसमें कोई दम नहीं होता है, वो थोड़े समय चलती है और थोड़े समय आकर्षित भी करती है लोगों को, बाद में चलती नहीं, क्योंकि पर उस समय इस बातों की वजह से, अब जिस परिवार को बिल्कुल भी पता नहीं और उन्होंने फर्स्ट स्टोरी ही ये सुनी, अब उनको कहीं कहे चलो तो संकोच करेंगे जाने में, कौन जाएगा? अब उस समय की बात छोड़ो, अभी अगर कोई कहे तो, अभी सोचो नई एक संस्था चालू हो गई है, यहाँ पे कन्याएं जा रही है, माताएं जा रही है, और वो कहती है हमको ये हुआ हमको वो हुआ, और फिर साथ साथ हम न्यूज़पेपर में रोज खबरें पढ़ रहे, ऐसी सारी, जाने की हिम्मत नहीं होगी। उस समय तो मीडिया बहुत छोटा था, अभी तो बहुत बड़ा है। तो जब भी कोई भी बात सुनो, विश्वास नहीं करना है उस पर। जब भी कोई हमें आके किसी के बारे में बताए कि ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, होगा शायद वो बिल्कुल अपोजिट, कोई कहे कि ये बहुत क्रोधी है पर वो तो एकदम प्रेम का सागर है, कोई कहे बहुत अहंकारी है वो तो, जैसे वो उस दिन वो एक स्टोरी सुनाई थी ना मोहम्मद पैगंबर की, पूरा एक क्लास सुना था, एक ज़ईफ़ा थी, वो एक बूढ़ी औरत होती है ना, उसने सुन रखा था कि ये जो मोहम्मद है ये सबको मुस्लिम बनाता है और वो बहुत अहंकारी है, वो था ना, फिर उसको कहीं, वो कहती अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, वो गीत है पूरा क्लास हुआ था यहाँ पर एक बार, वो कहती अब मैं यहाँ से जाऊँगी, वो एक शहर ही छोड़ के चली जाती हूँ, और फिर उसके पास सामान होता है तो एक वो व्यक्ति जा रहा था, वो कहती मेरा सामान उठा के जाओगे, वो कहते हाँ चलूँगा चलो, और वो सामान उठा उठा के चलता है उसका, और फिर उसको बताती है कि वो जो है ना यहाँ पर एक मोहम्मद है, उससे बिल्कुल तुम बच के रहना, उससे उसके झांसे में बताना तुम, और वो सब सुना है एक ज़ईफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी, वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हासिम घराने में, ऐसा गीत है ना पूरा उर्दू। तो वो लास्ट में फिर वो उसको कहती है कितने पैसे हुए तुम्हारे, तो वो कहता है पैसे में पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक गुलाम हूँ। तो वो फिर जाते जाते भी उसको बताती है कि बच के रहना, और फिर लास्ट में पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर लास्ट में बोलता था मैं ही मोहम्मद। तो ये ऐसा है। तो फिर उसके बाद में ये लोग क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आते थे और जो गरीब लोग होते थे उनको पैसे देते थे या फिर उनको शिक्षा देते थे और फिर वो कन्वर्ट होते थे इस तरह से। ये भी कोई निराधार है, जिसको सत्य पूछ जानना है वो सत्य तक पहुंचे, इंक्वायरी करो, पहुंचो, अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद में इन्होंने अपनी बहुत सारी जो प्रोफेसीज है विनाश की, इसको विनाश डिस्ट्रक्शन कल्ट भी कहते हैं कई लोग, ये जब देखो तब विनाश विनाश की बातें करती रहती है, ब्रह्मा कुमारी अर्थात विनाश विनाश। तो बाबा ने कभी भी ऐसा कहा ही नहीं है, कोई डेट आज तक दी है? कभी नहीं दी है। वर्ल्ड वॉर कभी नहीं, 50 कभी नहीं, 76 की स्टोरी उस दिन सुनाई थी डिटेल में कि ये कैसे फैल गई वो राजौरी गार्डन वाली। उसके बाद में भी 2000 2012, ये सारी जो स्टोरीज है भगवान ने कभी नहीं कहा। ये जो ब्राह्मण है शायद उनका इंटरप्रिटेशन है, ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि तेज चलाकर कहा कि बस ये है, सब जोड़ जाड़ के भगवान ने जो बातें कही है। उसके बाद में भोजन, इसका तो सबसे ज्यादा विरोध है। एक भाई का एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देने की कोशिश करना। वो कहता है मेरी माँ 60 साल तक उसने सब कुछ खाया, नॉनवेज खाया,
होटल में खाया, सब कुछ खाया और हमारे साथ थी और सब जगह घूमती थी। अब अचानक वो ब्रह्मा कुमारी उसने ज्वाइन कर लिया और वो कहती है मैं ज्ञानी और तुम शूद्र, और आज से इस घर में प्याज लहसुन नहीं बनेगा, नॉन वेज नहीं पकेगा, प्याज लहसुन कोई यूज नहीं करना। वो कहते हैं हमारा क्या दोष, वो बेटा पत्र लिखता है, ब्रह्मा कुमारी जी हमारा प्रश्न का उत्तर दो। अभी मेरी माँ 60 साल तक उसने सारा एंजॉय किया और मैं हूँ 30 साल का और वो अभी बिल्कुल हम पर एकदम ये कर रही है अत्याचार, पूरा परिवार का शांति नष्ट हो गई है। जब देखो तब वो पीस ऑफ माइंड लगा के बैठती है और वो चैनल सुनती रहती है और किचन पे तो उसने एकदम ये कर दिया है। अब बताओ हम क्या करें। अचानक वो एकदम महाज्ञानी बन गई और हम शूद्र बन गए, हम अपवित्र बन गए, हमारे हाथ का भी उसको चलता नहीं, अब तक हमारे साथ ही नॉनवेज खाती थी वो। अब ये प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करना हम कई बार बहुत कट्टर हो जाते हैं यहाँ आते है। थोड़ा सा बाबा कहते हैं तोड़ निकल, तोड़ निभाना है समझते हुए, नहीं तो वो कहता है कि हमारे परिवार का कहते तो तुम लोग ओम शांति हो पर परिवार की शांति भंग कर दी है तुम लोगों ने। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है, कंप्लेंट बॉक्स है, कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रह्मा कुमारी ढेर सर। और फिर ये एक ने पूछा, वो दूसरा कहते हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है तीसरा कहते हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हमारे घर में अभी चल रहा है। इसलिए जो यहाँ आ रहे हैं उनको भी थोड़ा समझना है, डिटेल अच्छे से समझना है इस ज्ञान को, नहीं तो ये घर टूट जाएंगे, शांति भंग। उसके बाद में वीआईपी पीछे पड़ते हैं, पॉलिटिशियंस नेता लोग, यही लोग चाहिए उनको, इनको वो लोग नहीं चाहिए हाउसकीपिंग स्टाफ। इनको डॉक्टर इंजीनियर अगर मिल जाए तो बिल्कुल नहीं छोड़ती है वकील नेता इनके पीछे ज़्यादा पड़ती है। तो बाबा ने क्या कहा है, एक को पकड़ लो तो ये जो नीचे वाले हैं सब अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये संदेश ही इतना पावरफुल है कि सबको सुनाना है, कोई भी ना बचने पाए इस संदेश से। ये ऐसा संदेश है तो हरेक को ये हरेक तक ये संदेश पहुंचाना ही है। इसके लिए जब लोग सोचते कोई आमदार कोई खासदार आया है तो ज़रूर कुछ तो दम होगा इनमें, तो बाकी भी आ जाते। तो भगवान की मेथड टेक्निक बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। तो ये एक रीति से उनका जो देखा जाए वो राइट कह रहा है, हम करते ही है ऐसा, अब क्या करें, ऐसा ही है सत्य। पर हमारी जो मंशा है उसके पीछे की बहुत ऊंची है, इंटेंशन बहुत प्योर है। उसके बाद में ये अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम ब्राह्मण और वो शूद्र, पर इसमें थोड़ी सी ब्राह्मणों की भी गलती है, ब्राह्मणों की भी। ये कोई बताने की बात नहीं होती है, ए तुम नॉन बीके हो ना, तुम उधर खड़े हो। बाबा ने कहा बीके नॉन बीके, ये डिस्टिंक्शन किसका है? ये हम भी कहते हैं ये ज्ञानी भोजन यहाँ करेंगे, अज्ञानी वहां करेंगे। अभी जो आ रहा है बेचारा पहली बार, उसको पहला ही टाइटल क्या दे दिया, पहला ही सोमान, तुम अज्ञानी हो, तुम नॉन बीके हो। बेचारे को कितना बुरा लगता होगा, हाँ पहले ही दुखी हो जाता है वो। तुम ज्ञान में चलते हो? नहीं चलते ना, ऐसे बात करते। ये सब बात करने की जरूरत ही नहीं है किसी को। हमारा समभाव प्रियदर्शी, एक समदृष्टि सबके प्रति, कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी। हो सकता है जो आज अज्ञानी है, पता नहीं पुण्य पूर्व जन्म के कितने पुण्य है उसके, वो तुमसे भी ज्यादा आगे निकल जाएगा जैसे ही आ जाएगा वो। हाँ तो ज्ञानी अज्ञानी का ये नहीं है कि इसने 7 दिन का कोर्स किया। हो सकता है, हम तो देखते हैं हमारे पास क्रिश्चियन नंस आती है यहाँ पर हॉस्पिटल में, सेंट मैरी स्कूल है, सेंट सोफिया है, वहाँ की सिस्टर्स आती है सारी, इतनी विनम्रता है उनमें, इतना प्रेम से भरी हुई है, इतना रिस्पेक्ट। और कई बार तो ये भी देखते हैं ब्राह्मण सीधा अंदर घुस जाते, वो बाहर बैठी रहती है वेट करते हुए अपने नंबर के लिए, तो वो वाली बात नहीं। इसमें आचरण क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ये टाइटल हम कितने भी लगा लें यहाँ बीके और वो सब, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं कहना है ये अज्ञानी, ये नॉन बीके, और ये हाँ ये गेस्ट है, या फिर कहने की जरूरत नहीं है कुछ। ये एक अपमान जैसा हो जाता है, उसकी फर्स्ट इंप्रेशन ही हो जाए कि मुझे ये लोग अज्ञानी समझते हैं। और फिर वो भी कई बार फिर दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, हमने भी सब पढ़ा, हम तो जाते थे उधर सेंटर में, झूठ बोलता है फिर वो। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा होशियार होगा तो दुखी, कोई कमजोर ये होगा तो दुखी हो जाएगा, पर कोई ज़्यादा होगा तो दिखावा करेगा। वो ऐसे शॉल ले लेगा यहाँ रख के, जैसे बीके चलते वैसे भी पहली बार आते तो ऐसे चलते। तो ये उसके बाद में पैसे की बात, पैसा बहुत है इनके पास, तो बाबा ने तो यही कहा है कि यहाँ जो भी पैसा आता है तन मन धन से आता है हर एक के। और कई बार तो पिता अपने बेटी की वैसे भी शादी करता है, तो जब इधर देते थे तो जो उधर देना है वो इधर दे रहे, तो पैसे की बात नहीं है, ये साइकिल की बात है। इस पर हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये 5000 साल का चाहे उत्तर एक ही है कि ये रेवलेशन है, ये प्रकट हुआ है ज्ञान, किसी व्यक्ति ने दिया नहीं है, हमें भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था जिसके द्वारा दिया कि ये चक्र 5000 साल का है। 6000 साल का ही क्यों नहीं है और 4500 साल का ही क्यों नहीं है, ढेर सारे प्रश्न है, वो हम देखेंगे। उसके बाद में सीक्रेट रखा है उन्होंने रिवीजन, तो बाबा ने तो खुद ही कह दिया है कि ये ज्ञान क्या है, धीरे धीरे प्रकट हुआ है और करेक्शन एडिशन होती रहेगी लास्ट तक, ये मत समझो कि ये फाइनल हो गया, और करेक्शन एडिशंस होगी शायद कुछ, धीरे धीरे खुलता है बुद्धि का ताला। और हर मुरली में, जैसे मुरलियों में आता है, हर मुरली में आपने देखा होगा ये शब्द आते, ये है गुप्त बात, ये है नई बात, बाबा तुमको रोज नई नई बातें, नई नई बातें कब बता रहे हैं, 1964 और 69 की ये मुरलियाँ है, 5 साल, तो तब ये बातें बताई जा रही है कि ये गुप्त गुह्य बात है, ये गुप्त बात है, क्योंकि ये राज खुल रहा है तब, तब तक प्रकट ही नहीं था ना, 36 से प्रकट धीरे धीरे हुआ ज्ञान, ये तब हो रहा था। अभी हम इतने साल से रोज रोज सुन रहे हैं तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हम पर ये तब पहली बार जब वो लोग सुन रहे होंगे तो कैसा लगता होगा उनको, पहली बार जो फर्स्ट टाइम सुन रहे, अब तक अहम ब्रह्मस्मि शिवो हम करते रहते थे, अहम चतुर्भुजम ये नारे थे तब, पूरा एकदम जैसे इसमें पावर थी, इसमें अहम ब्रह्मस्मि पिकेटिंग में, अहम ब्रह्मस्मि शिवो हम, ये सारे नारे थे। और फिर धीरे धीरे प्रकट हुआ कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, और एकदम सब चुप होके सुनते होंगे, चुपचाप कुछ बोलना नहीं, क्योंकि अब तक जो हमारा था वो थट थट तोड़ा उसने। तो लास्ट उसके बाद में ट्रांस, और ट्रांस की भी बात सत्य है कि ऐसा है, और बाबा ने भी कहा है, पर ट्रांस के पार्ट में भी थोड़ी गड़बड़ हुई इसलिए बाबा ने 69 की जो फर्स्ट मुरली उसमें कहा कि ये ट्रांस का पार्ट अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, और केवल, और इसका कोई फायदा नहीं है, और केवल दीदी दादी जिसको निमित्त बनाएगी वही ट्रांस में जाएगा। तो ऐसी भ्रांतियां जुड़ती है, ट्रांस में जाने वाले भी चले गए, ये भी कहा है बाबा ने कई बार, उनको भी माया आ गई, उनको जिनको अव्यक्त नाम दिए वो भी चले गए। तो इस संसार में ये सारी बातें होगी, परंतु हिम्मत नहीं हारना, ये सब सुनते हुए भी जिनको निश्चय बुद्धि है वो कभी भी पीछे नहीं जाएंगे, इतनी सारी भ्रांति है। और ये तो कहा यज्ञ के प्रति, अब एक दूसरा एस्पेक्ट भी है व्यक्तिगत, व्यक्ति के प्रति भी अपमान, बदनामी, अफवाहें, जैसे ब्रह्मा के प्रति ये अफवाह फैली, ब्रह्मा की क्या रिएक्शन होगी, बाबा आपके बारे में ये लिखा है, अच्छा मेरे बारे में लिखा, जाओ उनसे मिलो, कुछ नहीं, कभी बाबा ने कहा एंटी वार्ले से जाके मिलो, ये करो, कुछ नहीं, चुप रहो बस। आंसर क्या है, जब भी विरोध हो, क्रिटिसाइज हो, उत्तर है मौन। और ऑनलाइन अगर कोई अब्यूज करे उसका उत्तर है परम मौन, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना, नहीं तो लड़ाई होगी, पहले युद्ध के मैदान में लड़ाई होती, अभी सोशल मीडिया पर लड़ाई चालू है। तो जो जमाने में हिम्मत ना हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस इंसान में उसी की हमेशा, इस जहां में उसकी हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। ओम शांति।
जो जमाने में हिम्मत न हारे, जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे, हमने माना जहां में बहुत रोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। हमने माना जहां में बहुत रोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। तुमको जीना है तो सर उठा के जियो, अपने सारे गमों को भुला के जियो, मुस्कुरा के जो हर पल गुजारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत ना हारे, हमारी उम्मीदों की तकदीर हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो। तुम हमारी उम्मीदों की तकदीर हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो। दे रही है सदाएं तुम्हें जिंदगी, आसमानों को छूना है तुमको अभी, बढ़ के मंजिल उसी को पुकारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे।